विषय घर और बाहर, भाग एक, पृष्ठ संख्या 55। युगों से नारी का कार्य क्षेत्र घर में ही सीमित रहा। उसके कर्तव्य के निर्धारित करने में उसकी स्वभाव, जात, कोमलता, मातृत्व, संतान पालन आदि पर तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही बाहर के कठोर संघर्षमय वातावरण और परिस्थितियों ने भी समाज को ऐसा ही करने पर बाध्य किया। यदि विचार कर देखा जावे तो न उस विस्मृत युग में, जब जाति नवीन भूमि में अपनी जीवन स्थिति को सुदृढ़ बना रही थी, न उस कोलाहलमय काल में, जब उसे अपने देश या सम्मान की रक्षा के लिए तलवार के घाट उतरना या उतारना पड़ता था, और न उस समय जब हताश जाति विलास में अपने दुख डुबा रही थी। स्त्री के जीवन के सम्मुख ऐसा विविध वर्णी क्षितिज रहा, जैसा आज है या जैसा भविष्य में होने की संभावना है। तब उसके सामने एक ही निश्चित लक्ष्य था, जिसकी पूर्ति उसे और उस समय के समाज को पूर्ण आत्मतोष दे सकती थी। चाहे द्रौपदी के समान 5 पति स्वीकार करना हो, चाहे सीता के समान मन, वचन, कर्म और शरीर से एक ही की उपासना हो, चाहे राजपूत रमणी का जलती चिता में जौहर व्रत हो, और चाहे ऋतियुग की सौंदर्य मदिरा बनकर जीवित रहना हो। परंतु एक समय में एक ही लक्ष्य, एक ही केंद्र बिंदु ऐसा रहा, जिसकी ओर स्त्री के जीवन को सारी शक्तियों के साथ प्रभावित होना पड़ा। उस लक्ष्य तक पहुँच जाने में उसके जीवन की चरम सफलता थी। उस तक पहुँचने के प्रयत्न में मिट जाना उसके लिए स्तुत्य, परंतु उस मार्ग से लौट आना या विपरीत दिशा की ओर जाने की इच्छा भी उसके लिए कलंक का कारण थी। आज उसका पहले जैसी कठोर रेखाओं में बंधा न एक रूप है और न एक कर्तव्य। अतः वह अपना लक्ष्य स्थिर करने के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र कही जा सकती हैं। पृष्ठ 56, पैराग्राफ चेंज। आज स्त्री का सहयोगी पुरुष न आदिम युग का ऐसा अहेरी है, जिसके लाए हुए पशु पक्षियों को खाद्य रूप में परिवर्तित कर देने में ही उसके कर्तव्य की इति हो जावे। न वह वेद काल का ऐसा गृहस्थ है, जिसके साथ यज्ञ में भाग लेना ही उसे सहधर्मचारिणी के पद तक पहुंचा सके, और न वह वीर युग का ऐसा युद्ध परायण आहत है, जिसकी शिथिल और ठंडी उंगलियों से छूटती हुई तलवार संभाल लेने में ही उसके जीवन की सार्थकता हो। प्रत्युत वह इस उलझन भरे यंत्र युग का एक सबसे अधिक उलझनमय यंत्र बन गया है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का सहयोग भी तब तक संभव नहीं, जब तक उसे ठीक ठीक न समझ लिया जावे। समझ लेने पर भी सहयोग तभी सुगम हो सकेगा, जब स्त्री में भी जीवन के अनेक रूपों और परिस्थितियों के साथ चलने और उनके अनुरूप परिवर्तनों को हृदयंगम करने की शक्ति उत्पन्न हो जावे। पैराग्राफ चेंज। वास्तव में स्त्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वरन घर के बाहर भी समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक हैं। अतः उसका कर्तव्य भी अनेकाकार हो गया है। जिसके पालन में कभी-कभी ऐसे संघर्ष के अवसर आ पड़ते हैं जिसमें किंकर्त व विमूढ़ हो जाना पड़ता है। वह क्या करे और क्या न करे, उसका कार्यक्षेत्र केवल घर है या बाहर या दोनों ही, इस समस्या का अब तक समाधान नहीं हो सका है। पैराग्राफ चेंज। उसके सामने जो अन्य प्रगतिशील देशों की जागृत स्त्रियां हैं, वे इस निष्कर्ष तक पहुंच चुकी हैं कि स्त्री के लिए घर उतना ही आवश्यक है जितना पुरुष के लिए। वह पुरुष के समान ही अपने जीवन को व्यवस्थित तथा कार्यक्षेत्र को निर्धारित कर सकती हैं तथा उसका मातृत्व या पत्नीत्व उसे अपना विशिष्ट मार्ग खोजने से नहीं रोक सकता और न उसके जीवन को घर की संकीर्ण सीमा तक ही सीमित रख सकता है। भारतीय स्त्री ने अभी तक इस समस्या पर निष्पक्ष होकर वैसा विचार नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए, परंतु अव्यक्त और अज्ञात रूप से उसकी प्रवृत्ति भी उसी ओर होती जा रही है। हमारे यहाँ स्त्रियों में 1% भी साक्षरता नहीं है, इसलिए हमें इस प्रवृत्ति को भी उतनी ही कम संख्या में ढूंढना चाहिए। पृष्ठ 57। संसार के बड़े से बड़े असंभव से असंभव परिवर्तन के आदि में इन्हें गिने व्यक्ति ही रहे हैं। शेष असंख्य व्यक्ति तो कुछ जानकर और कुछ अनजान में ही उनके अनुकरणशील बन जाया करते हैं। यदि किसी परिवर्तन का मूल्य या परिणाम आलोचनीय हो तो हमें उसके मूल प्रवर्तक तथा समर्थकों के दृष्टिकोण को समझ लेना उचित होगा, क्योंकि अनुकरणशील व्यक्तियों में प्रायः हमें उसका सच्चा रूप नहीं मिलता। अनुकरण तो मनुष्य का स्वभाव है, परंतु प्रत्येक कार्य की अंतर्निहित प्रेरणा को उसी रूप में समझ पाना अपने अपने बौद्धिक विकास पर निर्भर है। पैराग्राफ चेंज। भविष्य में स्त्री समाज की रूपरेखा हमें इन्हीं विदुषियों से मिलेगी जिन्हें हम अभी अल्पसंख्यक जानकर जानना नहीं चाहते, जिन्हें हम अपवाद मानकर समझना नहीं चाहते। वे अपवाद हो सकती हैं, परंतु क्रमागत व्यवस्था के विरुद्ध किसी नवीन परिवर्तन को ले आने का श्रेय ऐसे अपवादों को ही मिलता रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के बिना हम असंभाव्य को साधारण या असंभव समझ ही नहीं पाते। पैराग्राफ चेंज। यदि हम अपने ही प्रांत की थोड़ी सी शिक्षिता महिलाओं पर दृष्टिपात करें तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि उन्होंने अधिकांश में नवीन दृष्टिकोण को ही स्वीकार कर घर बाहर में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है, चाहे परिणामतः वह प्रयत्न सफल रहा चाहे असफल, सालघ्य समझा गया चाहे निंदेय। इस युग में ऐसी शिक्षिता स्त्री कठिनता से मिलेगी जिसे गृह में ऐसी आत्मतुष्टि मिल गई हो जिसको पाकर जीवन के अनेक आघातों को, जय पराजय को मनुष्य गर्व के साथ झेल लेता है। हमारी शिक्षित बहनों में कुछ ऐसी भी हैं जो केवल गृहिणीपन में संतोष न पाकर सार्वजनिक जीवन का उत्तरदायित्व भी संभालती और कभी-कभी तो दूसरे कर्तव्यों के पालन के लिए पहले की उपेक्षा करने पर भी बाध्य हो जाती हैं। ऐसी भी हैं जो अपने संतान तथा गृहस्थी की ओर यथाशक्ति ध्यान देती हुई अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करती रहती हैं। ऐसी भी हैं जो गृहस्थ जीवन तथा सार्वजनिक जीवन के संघर्ष से भयभीत होने के कारण पहले जीवन को स्वीकार ही नहीं करती तथा ऐसी भी दुर्लभ नहीं जो समस्त शिक्षा का भार लिए घर में निष्क्रिय और खिन्न समय व्यतीत करती रहती हैं। यदि स्त्रियों के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव को हृदय में ही समाहित किए रहना स्वाभाविक न होता तो संभव है समाज उनकी कठिनाइयां समझ सकता तथा उनके जीवन को अधिक सहानुभूति से देखना सीख सकता। पृष्ठ 58। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में उनके जीवन के विषय में भ्रांतिमय धारणा बना लेना जितना संभव है उतना उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखना नहीं। दरिद्र तथा श्रमजीवी इतर श्रेणियों की स्त्रियों तक तो शिक्षा पहुंची ही नहीं है, परंतु उनके सामने घर बाहर की कोई समस्या भी नहीं है। ऐसी कोई सामाजिक तथा सार्वजनिक परिस्थिति नहीं है जिसमें वे पुरुषों के साथ नहीं रह सकती, न ऐसी कोई गृहस्थी या जीविका से संबंध रखने वाली समस्या है जिसमें वे पुरुष की सहयोगिनी नहीं। पैराग्राफ चेंज। यह घर तथा बाहर का प्रश्न केवल उच्च मध्यम तथा साधारण वित्त वाले गृहस्थों की स्त्रियों से संबंध रखता है तथा ऐसी ही परिस्थितियों में सदा उन्हीं तक सीमित रहेगा। गृह की व्यवस्था और संतान पालन की किन सुविधाओं को ध्यान में रखकर कब किसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था रची थी, इसकी खोज ढूंढ तो हमारा कुछ समाधान कर नहीं सकती। विचारणीय यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या संभव है और क्या असंभव। पैराग्राफ चेंज। पुरुष की जिस मनोवृत्ति ने उसे स्त्री को अपने ऐश्वर्य की प्रदर्शनी बनाकर रखने पर बाध्य किया, उसी ने कालांतर में घर के कर्तव्यों से भी उसे अवकाश दे दिया। संपन्न कुलों में स्त्री को न संतान की विशेष देख रेख करनी पड़ती है और न गृहस्थ की व्यवस्था। वह तो केवल स्वयं को अलंकृत करके पति या पिता के घर का अलंकार मात्र बनकर जीना जानती हैं। उसके लिए बाहर का संसार सजीव नहीं और न वह उसके लाभ के लिए कुछ श्रम करने को स्वच्छंद ही हैं। हम में से प्रायः ऐसी रानी महारानी और अन्य संपन्न घरों की स्त्रियों के जीवन से परिचित होंगे जिन्हें सुवर्ण देवता की हृदयहीन मूर्ति की उपासना के अतिरिक्त और किसी कार्य का ज्ञान नहीं। भाग्यवश इनमें से जो कुछ शिक्षिता भी हो सकती है उन्हें सार्वजनिक जीवन में कुछ कर सकने की स्वतंत्रता उतनी नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी। इस श्रेणी की स्त्रियों के निकट भोजन बनाने और संतान पालन का गुणगान कुछ महत्व नहीं रखता क्योंकि उनके परिवार की प्रतिष्ठा के स्वर के साथ यह गुणगान बेसुरा ही जान पड़ेगा।